हाल ही में यूरोपियन संसद के चुनाव परिणामों से कई लोग अचंभित हैं, क्योंकि इस बार इन चुनावों में ऐसी पार्टियों को सफलता मिली है जिन्हें अत्यंत दक्षिणपंथी रुझान रखने वाले या फार राइट पार्टीज माना जाता है, और जो एक स्तर पर यूरोपियन यूनियन के ही पक्ष में नजर नहीं आती। तो इन्हीं परिणामों पर समीक्षा करने के लिए हमने बात की है डेनमार्क सहित कई अन्य देशों में भारत की राजदूत रहीं फॉर्मर एम्बेसडर नीलम देओ जी के साथ। एम्बेसडर नीलम देओ भारत स्थित थिंक टैंक गेटवे हाउस इंडियन काउंसिल ऑन ग्लोबल रिलेशंस की निदेशक भी हैं।
देखिए, ये इलेक्शन कहने को तो यूरोपियन पार्लियामेंट की थी, लेकिन इसमें एक तो लोग इतने दुखी हैं यूरोप में क्योंकि उनकी इकोनॉमीज में ट्रबल है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ऑस्टेरिटी मेजर्स जिसका मतलब ये हुआ कि सारे जो वेलफेयर प्रोटेक्शंस थे जैसे डिसेबिलिटी पेंशन, रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया गया है, वो सब के कारण लोग असली तो अपनी सरकार से नाराज है। लेकिन यूरोप में ये मान्यता फैली हुई है कि क्योंकि एक करेंसी है, सिंगल करेंसी यूरो के कारण सरकारों के पास, जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास कोई पावर ही नहीं है बाकी तो, और सारी गड़बड़ ब्रसल्स से होती है जहां की यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स है। लेकिन यूरोपियन पार्लियामेंट तो लक्समबर्ग में बैठता है, लेकिन क्योंकि यूरोपियन यूनियन के इतने सारे इंस्टीट्यूशन है, देर आर ऑलमोस्ट 90 इंस्टीट्यूशन, कोई मॉनेटरी पॉलिसी है, कोई और चीज है, कि एक तरह से लोगों के मन में बैठा हुआ है कि सारी गड़बड़ जो कुछ होता है वो करते हैं। तो एक तरह का ये प्रोटेस्ट वोट है, वो कह रहे हैं गिव अस बैक आवर कंट्री। जैसे फ्रांस में स्लोगन वही था कि गिव अस बैक आवर कंट्री, कि ब्रसल्स का पावर घटा देना चाहिए और नेशनल गवर्नमेंट का पावर बढ़ा देना चाहिए। तो उसमें फ्रांस में तो जो मारी ले पेन की नेशनल फ्रंट पार्टी है उनको 25% से ज्यादा वोट मिला, एंड इट इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन दैट वोट ऑन द यूरोपियन पार्लियामेंट, जिसका मतलब यह हुआ कि ज्यादातर लोग फ्रांस में यूरोपियन यूनियन में होना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस पार्टी का ये कहना है ये यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और इसका पावर कम करना चाहिए। ये रियली इन अ वे इट इज अ वोट अगेंस्ट जो अपनी सरकार है, इट इज अ वोट अगेंस्ट जो उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एंड अ वोट विच सेज कि हमारी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही है पिछले 6 साल से।
जी, अच्छा ये बताइए नीलम जी कि क्या आपको लगता है कि जो ये प्रदर्शन रहा है इन पार्टियों का, जिन्हें तथाकथित कह रहे हैं कि फार राइट विंग पार्टीज हैं, क्या आपको लगता है कि स्थानीय स्तर पर जब इनके लोकल इलेक्शंस होंगे, या जैसे यूके इंडिपेंडेंस पार्टी हो गई या फ्रांस में पार्टी हो गई, क्या आपको लगता है कि ये भी कहीं हो सकता है कि नेशनल इलेक्शंस में भी ये पार्टीज अब बहुत इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहे?
इनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होते जा रहा है पिछले 8-10 साल से। जैसे डेनमार्क में ऑलमोस्ट 25% ये प्रोग्रेस पार्टी को मिला है, या जैसे यूकिप जो 2 साल पुरानी पार्टी है, एंड इट हैज डन सो वेल इन द यूके, इन सब पार्टीज का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है लोकल इलेक्शंस जो होती हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज की, टाउन इलेक्शंस, उस तरह की इलेक्शंस में, और फिर ये यूरोपियन पार्लियामेंट में। तो इसका कुछ इफेक्ट जरूर होगा नेशनल इलेक्शंस में, बट इतना ज्यादा नहीं।
मतलब आपको लगता है कि जब नेशनल इलेक्शंस होंगे तो जो कन्वेंशनल पार्टियां हैं, जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं, उनको ये बहुत बड़ी चुनौती आज सच नहीं दे पाएंगे?
बहुत बड़ी चुनौती नहीं, लेकिन चुनौती जरूर होगी, क्योंकि ये जैसे फ्रांस में इस पार्टी को 27% वोट मिला है, और जो सोशलिस्ट पार्टी है जिसकी सरकार बनी हुई है इस समय, उसको वो थर्ड आई है इन द वोटिंग परसेंटेज। तो चुनौती तो जरूर है, लेकिन ये नहीं है कि ये राइट विंग पार्टीज, जो कि इनका एक्चुअली मकसद तो एंटी इमिग्रेंट है और ये बड़े फॉरेनर फोबिक है, ये नहीं है कि ये सरकार बना पाएंगे, लेकिन इनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ते जा रहा है।
जी नीलम जी, अच्छा ये बताइए, हालांकि आपने संक्षिप्त में हमें कहा कि ये जो एक मत था ये यूरोपियन यूनियन के खिलाफ एज सच मत था, लेकिन आपके अनुसार मुख्य कारण क्या है? ये क्या आर्थिक कारण है इसके, या जैसे आपने कहा इमिग्रेशन का इशू है, इस तरह के मतदान के पीछे क्या मुख्य कारण है?
मुख्य कारण तो आर्थिक है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। कई कई देशों में तो 25% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है यंग पीपल का, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई हो गया है। और साथ साथ क्योंकि ऑस्टेरिटी मेजर लाए गए हैं, तो जो वेलफेयर मिलता था, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मान लीजिए, वो सब घटाते जा रहे हैं। तो लोग उस तरह से बड़े आर्थिक स्तर पे बहुत परेशान है, और यही इसका मूल्य कारण है। तो साथ साथ ये पार्टीज उनके कैंपेन में, उनके प्रोपेगेंडा में, वो ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि इमिग्रेंट्स हैं, नॉन वाइट इमिग्रेंट्स हैं, या जैसे यूके में तो कह रहे हैं कि रोमेनिया और बल्गेरिया से लोग आए हैं, या जैसे जिप्सीज, रोमा के अगेंस्ट ये पार्टीज हैं, एंड जैसे फ्रांस में ये पार्टीज दे आर एंटी इस्लामिक, क्योंकि बहुत से इमिग्रेंट फ्रांस में जो हैं वो अरब मुस्लिम कंट्रीज से आए हुए हैं। सो उनको ये मैसेज जाता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये इमिग्रेंट्स आ चुके हैं, ये आपकी जॉब्स ले रहे हैं, इसलिए हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि इतने सारे लोग बाहर से आए हुए हैं।
जी अच्छा, ये बताइए नीलम जी कि आपको क्या लगता है कि यूरोपियन यूनियन जो है, अब भविष्य में क्या आप देखते हैं, क्योंकि इस तरह के भी बयान आ रहे हैं कि भाई नेता लोग कह रहे हैं कि ठीक है हम समीक्षा करेंगे कि हमारे कैसे नियम हैं या किस पद्धति से यूनियन काम करता है, आपके अनुसार अब आगे क्या होगा यूरोपियन यूनियन के लिए? कि आपको लगता है ये सिर्फ एक ठीक है मतदान हुआ और बात वहीं की वहीं रह जाएगी, या इसका बहुत व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ने वाला है इसके भविष्य पर यूरोपियन यूनियन के?
इसका इन्फ्लुएंस तो होगा ही होगा, कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में जो एक्सट्रीम पार्टी का सपोर्ट बढ़ रहा है, राइट विंग मान लीजिए इन दिस केस, तो बाकी सब पार्टीज भी राइट को स्विंग करती हैं, तो जो मेनस्ट्रीम पार्टीज हैं वो भी अब एक एंटी इमिग्रेंट, एंटी फॉरेनर सेंटिमेंट को सब्सक्राइब करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में तो है ही है कि फॉर इमिग्रेशन इतने सारे बैरियर्स खड़े किए जा रहे हैं, इतने सारे रूल्स बनाए जा रहे हैं कि बाहर से कोई लोग आ ही ना सके। सो इसका इम्पैक्ट दोनों पे होता है, नेशनल पार्लियामेंट में नेशनल इम्पैक्ट ये होता है कि बाकी सब पार्टीज भी उस डायरेक्शन को स्विंग करती हैं, और यूरोपियन पार्लियामेंट तो बिल्कुल पैरालाइज हो सकता है, क्योंकि जब इतनी सारे मेंबर्स हैं जो कि कुछ चाहते ही नहीं है कि यूरोपियन यूनियन में कुछ और स्ट्रेंथ हो या ऐसे रूल्स बनाए जाएं जो सब कंट्रीज को अप्लाई करेंगे, तो एक तरह का पैरालिसिस ही आ जाएगा।
जी नीलम जी, अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके अनुसार, क्योंकि आप डिप्लोमैट रही हैं, भारत की राजदूत रही हैं, कि यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि ये एक सफल प्रयोग रहा है, दैट इट हैज बीन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब एक सिर्फ कहने के लिए, जिसे कहते हैं कि ठीक है एक करेंसी है यूरोपियन यूनियन है, लेकिन वो बात लोगों में नहीं है कि भाई हम यूरोप के सदस्य हैं उस तरह से?
नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली काफी सक्सेसफुल रहा है, और बाकी सब कॉन्टिनेंट्स में, बाकी सब रीजन्स में लोग यूरोपियन यूनियन की तरफ देख के उसको एक जैसे माना जाता है एज द गोल्ड स्टैंडर्ड, कि अपना यूनियन बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे चाहे वो अफ्रीकन यूनियन हो या साउथ ईस्ट एशिया में जैसे आसियान है, या हमारा ही इंडिया और सार्क कंट्रीज जो साउथ एशिया में हैं, तो ये एक एग्जांपल देखा जाता है कि इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। अब यूरोप में भी यूरोपियन यूनियन के बड़े अचीवमेंट्स हैं, आपको याद होगा कि पिछले साल इनको नोबेल प्राइज फॉर पीस मिला था, यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन, एंड ये सच है कि यूरोप में जितनी लड़ाइयां हुई हैं और जितने वॉर्स एंड द किलिंग, और इतना ब्लडी कॉन्टिनेंट है, अब किसी को याद नहीं है कि कितने फॉर हंड्रेड ऑफ इयर्स ये किस प्रकार लड़ रहे थे और कितनी ब्रुटैलिटी से लड़ रहे थे आपस में।
यूरोपियन
यूनियन हैज डेफिन, और दो वर्ल्ड वॉर्स वगैरह अब देखा जाए तो मिलियंस वर किल्ड इन दीज वॉर्स। तो उस तरह से तो इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि यूरोप हैज बीन एट पीस चाहे अभी रशिया से फिर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ओवर यूक्रेन, बट ओवरऑल इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर अ कॉन्टिनेंट जिसकी इतनी अग्रेसिव और वॉरलाइक हिस्ट्री है. वहां पे देर हैज बीन पीस मेंटेन्ड फॉर 65-70 इयर्स. ये एक बड़ी अचीवमेंट है. दूसरा ये है कि इट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑल्सो टू इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, क्योंकि मार्केट का साइज बढ़ता जा रहा है. अब कई लोगों का कहना है कि सिंगल करेंसी बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो गया बिकॉज सम द इकोनॉमीज इन द डिफरेंट कंट्रीज वो बहुत अलग अलग लेवल पे थी. अब जैसे ग्रीस की इकोनॉमी को जर्मनी की इकोनॉमी से कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. सो देर हैव बीन सम प्रॉब्लम्स, लेकिन इस यूनियन के अचीवमेंट्स भी बहुत रहे हैं. अब बाकी रीजन्स में ऐसा यूनियन बने या इससे ढीला बनना चाहिए, मेरे ख्याल में बाकी सब एरियाज में काफी ढीले यूनियंस बनेंगे. जैसे हमारा अपना ही, हम पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश या श्रीलंका के साथ ट्रेड जरूर चाहते हैं और पीसफुल बॉर्डर्स चाहते हैं, लेकिन कोई सिंगल करेंसी की तो बात नहीं हो रही है ना इस समय. जैसे आसियान में एक सिंगल इकोनॉमिक स्पेस की बात होती है जिसमें कि गुड्स एंड पीपल कैन मूव फ्रीली, कि लोगों का आना जाना या जो ट्रेड के लिए सुविधा रहे. उस प्रकार के यूनियन बाकी रीजन में डेवलप हो रहे हैं. जहां तक यूरोपियन यूनियन अब आज कहते हैं लोग कि ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया और अनमैनेजेबल हो गया, लेकिन अगर इनका यूरो क्राइसिस ना होता, अगर ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो अमेरिका में स्टार्ट हुआ था वो ना होता, तो लोग खुश थे और एक यूरोपियन आइडेंटिटी बन भी गया है. जैसे यंग पीपल आर यूज, दे डू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इटालियंस और फ्रेंच और व्हाटएवर, बट दे ऑल्सो थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज यूरोपियन, और उनको ये बड़ा अच्छा लगता है कि एक देश से दूसरे देश आप अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाओ. कोई पासपोर्ट कंट्रोल्स नहीं है, कोई बॉर्डर कंट्रोल नहीं है, कोई मनी नहीं चेंज करना पड़ता है, तो सुविधाएं भी बहुत हैं.
जी नीलम जी, और मेरे ख्याल द वेरी फैक्ट कि फ्रांस और जर्मनी जैसे दो देश मतलब साथ में मिलकर मतलब एक यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, इतनी भीषण वहाँ पे वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, ब्रिटेन भी इन्वॉल्व था, कितने सारे देश थे, तो मेरे ख्याल से दूसरे रीजन्स में भी ये उम्मीद इससे बनती है कि आगे चलकर शांति का वक्त जरूर आ सकता है.
जरूर, क्योंकि खास करके क्योंकि दूसरे रीजन्स में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो यूरोपियंस की लड़ाइयों की ही चल रही हैं. अब अगर इंडिया पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, ये तो प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई थी बाय द यूनाइटेड किंगडम. जैसे अगर वियतनाम में प्रॉब्लम थी वो फ्रांस ने बनाई थी, या कोरियाज अभी तक डिवाइडेड हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो जैसे उन लोग के आपस के झगड़े झगड़ों का समाधान हुआ है, वैसे बाकी रीजन में भी देर इज एक बेनिफिशियल इफेक्ट, कहते हैं एक कामिंग इफेक्ट होता है.
जी नीलम जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू.